ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियाँ शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुने और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें।
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।
सादत हसन मंटो का फसाना, मोजेल। त्रिलोचन ने पहली मर्तबा 4 बरसों में रात को आसमान देखा था, और वो भी इसलिए कि उसकी तबीयत सख्त घबराई हुई थी। वो महज खुली हवा में कुछ देर सोचने के लिए अडवाणी चैम्बर्स के टीयर्स पर चला आया था। आसमान बिल्कुल साफ था, बादलों से बेनियाज बहुत बड़े खाकिस्तरी तंबू की तरह सारी बंबई पर तना हुआ था। हदे नजर तक बत्तियां जगह जगह रोशन थी। त्रिलोचन ने ऐसा महसूस किया कि आसमान से बहुत सारे सितारे झड़कर बिल्डिंगों से, जो रात के अंधेरे में बड़े बड़े दरख्त मालूम होती थी, अटक गए हैं और जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे हैं। त्रिलोचन के लिए ये बिल्कुल एक नया तजुर्बा था, एक नई कैफियत थी। रात को खुले आसमान के नीचे होना, उसने महसूस किया कि वो 4 बरस तक अपने फ्लैट में कैद रहा और कुदरत की बहुत बड़ी नियामत से महरूम रहा। करीब करीब 3 बजे थे, हवा बेहद हल्की फुल्की थी। त्रिलोचन पंखे की मकैनिकी हवा का आदि था, जो उसके सारे वजूद को बोझल कर देती थी। सुबह उठकर वो हमेशा यूं महसूस करता था, रात भर उसको मारा पीटा गया है, पर अब सुबह की कुदरती हवा में उसके जिस्म का रव्वा रव्वा तरोताजगी चूस कर खुश हो रहा था। जब वो ऊपर आया था तो उसका दिमाग सख्त मुजतरिब और हैजान ज़दा था, लेकिन आधे घंटे में ही वो जो इज्तिराब और हैजान जो उसको बहुत तंग कर रहा था, किसी हद तक ठंडा हो गया था। वो अब साफ तौर पर सोच सकता था। कृपाल कौर और उसका सारा खानदान मोहल्ले में था, जो कट्टर मुसलमानों का मरकज था। यहाँ कई मकानों को आग लग चुकी थी और कई जाने तलफ हो चुकी थी। त्रिलोचन इन सबको ले आया होता, मगर मुसीबत ये थी कि कर्फ्यू नाफिज हो गया था, और वो भी न जाने कितने घंटों का, गालिबन 48 घंटों का, और त्रिलोचन लाजिम मकलूब था। आसपास सब मुसलमान थे, बड़े खौफनाक किस्म के मुसलमान, और पंजाब से धड़ाधड़ खबरें आ रही थी कि वहाँ सिख मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढह रहे हैं। कोई भी हाथ मुसलमान हाथ बड़ी आसानी से नरमो नाजुक पाल कौर की कलाई पकड़कर मौत के कुएं की तरफ ले जा सकता था। कृपाल की माँ अंधी थी, बाप मफलूज, भाई था वो कुछ अरसे से देवलाली में था कि उसे वहां अपने ताजा ताजा लिए हुए ठेके की देखभाल करना था। त्रिलोचन को कृपाल के भाई निरंजन पर बहुत गुस्सा आता था। उसने जो कि हर रोज अखबार पढ़ता था, बरसात की तेजी और तुंदी के मुतल्लिक हफ्ता भर पहले आगाह कर दिया गया था और साफ लफ्जों में कह दिया गया था, निरंजन ये ठेके वेके अभी रहने दो, हम एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारा अग्रचे रहना बहुत जरूरी है, अव्वल तो यहाँ से उठ जाओ और मेरे यहाँ चले आओ। इसमें कोई शक नहीं कि जगह कम है, लेकिन मुसीबत के दिनों में आदमी किसी न किसी तरह गुजारा कर लिया करता है, मगर वो ना माना। इसका इतना बड़ा लेक्चर सुनकर सिर्फ अपनी घनी मूछों में मुस्कुरा दिया। तुम खामखा फिक्र करते हो, मैंने यहाँ ऐसे कई फसाद देखे हैं, ये अमृतसर या लाहौर नहीं, बम्बई है। बम्बई तुम्हें यहाँ सिर्फ 4 बरस हुए हैं और मैं 12 बरस से यहाँ रह रहा हूँ, 12 बरस से। जाने निरंजन बम्बई को क्या समझता था। उसका ख्याल था कि ये ऐसा शहर है, अगर फसाद बरपा भी तो उनका असर खुद जायल हो जाएगा, जैसे उसके पास छू मंतर है या वो कहानियों का कोई ऐसा किला है जिस पर कोई आफत नहीं आ सकती। मगर त्रिलोचन सुबह की ठंडी हवा में साफ देख रहा था कि मोहल्ला बिल्कुल महफूज नहीं। वो तो सुबह के अखबारों में ये भी पढ़ने को तैयार था कि कृपाल और इसकी माँ बाप का कत्ल हो चुका है। उसको कृपाल कौर के मफलूज बाप और उसकी अंधी माँ की कोई परवाह नहीं थी। वो मर जाते और कृपाल कौर बच जाती तो त्रिलोचन के लिए अच्छा था। वहाँ देवलाली में उसका भाई निरंजन भी मारा जाता तो वो भी अच्छा था कि त्रिलोचन के लिए मैदान साफ हो जाता। खास तौर पर निरंजन उसके रास्ते में एक रोड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा कंकर था। चुनांचे जब कभी कृपाल कौर से उसकी बातें होती तो वो उसे निरंजन सिंह के बजाय कंकर सिंह कहता। सुबह की हवा धीरे धीरे बह रही थी। त्रिलोचन का केसू से बेनियाज सर बड़ी खुशगवार ठंडक महसूस कर रहा था, मगर उसके अंदर बेशुमार अंदेशे एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। कृपाल कौर नई नई उसकी जिंदगी में दाखिल हुई थी। वो यूं तो हट्टे कट्टे कंकर सिंह की बहन थी, मगर बहुत ही नरमो नाजुक लचकीली थी। उसने देहात में परवरिश पाई थी, वहां की कई गर्मियां सर्दियां देखी थी, मगर उसमें वो शक्ति, वो गठाऊं, वो मर्दानापन नहीं था जो देहात की आम सिख लड़कियों में होता है, जिन्हें कड़ी से कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसके नक्श पतले पतले थे, जैसे अभी नामुकम्मल है। छोटी छोटी छातियां थी जिन पर बालाइयों की चंद और तन्हे चढ़ने की जरूरत थी। आम सिख देहाती लड़कियों के मुकाबले उसका रंग गोरा था, मगर कौर लट्ठे की तरह और बदन चिकना था, जिस तरह मर्सी राइजेट कपड़े की सतह होती है, बेहद शर्मीली थी। त्रिलोचन उसी के गांव का था, मगर ज्यादा देर वहां रहा नहीं था। प्राइमरी से निकलकर जब वो शहर के हाई स्कूल में गया तो बस फिर वहीं का होके रह गया। स्कूल से फॉरिंग हुआ तो कॉलेज की तालीम शुरू हो गई। इस दौरान में वो कई मर्तबा अपने गांव गया, मगर उसने कृपाल कौर के नाम की किसी लड़की का नाम तक ना सुना। शायद इसलिए कि वो हर बार इस अफरा तफरी में रहता था कि जल्द अज जल्द वापस शहर पहुंचे। कॉलेज का जमाना बहुत पीछे रह गया था। अडवाणी चैम्बर्स के टेरेस और कॉलेज की इमारत में गालिबन 10 बरस का फासिला था, और ये फासिला त्रिलोचन की जिंदगी के अजीबोगरीब वाकयात से पूरा था। बर्मा, सिंगापुर, हांगकांग, फिर बम्बई, जहां वो 4 बरस से मुमकिन था। इन 4 बरसों में उसने पहली मर्तबा रात को आसमान की शक्ल देखी थी जो पूरी नहीं थी। खाकिस्तानी रंग के तंबू की छत में हजार दिए रोशन थे और हवा ठंडी और हल्की फुल्की थी। कृपाल कौर का सोचते सोचते वो मोजेल के मुतल्लिक सोचने लगा, उस यहूदी लड़की के बारे में जो अडवाणी चैम्बर्स में रहती थी। उससे त्रिलोचन को घोड़े घोड़े इश्क हो गया था, ऐसा इश्क जो उसने अपनी 35 बरस की जिंदगी में कभी नहीं किया था। जिस दिन उसने अडवाणी चैम्बर्स में अपने एक ईसाई दोस्त की माफरत पर फ्लैट लिया, उसी दिन उसकी मुठभेड़ मोजेल से हुई, जो पहली नजर देखने पर उसे खौफनाक तौर पर दीवानी मालूम हुई थी। कटे हुए भूरे बाल उसके सर पर परेशान थे, बेहद परेशान। होठों पर लिपस्टिक यूं जमी हुई थी जैसे गाढ़ा खून, और वो भी जगह जगह से चटकी हुई थी। ढीला ढीला लिबास सफेद चुंगा पहनी थी, जिसके खुले गिरबान से उसकी नील पड़ी बड़ी बड़ी छातियां 3/4 के करीब नजर आ रही थी। बाहें जो कि नंगी थी, महीन महीन बालों से अटी हुई थी, जैसे वो अभी अभी किसी सैलून से बाल कटवा के आई है, और उनकी नन्नी नन्नी हवाइयां उन पर जम गई है। होठ इतने मोटे थे, मगर गहरे उनाबी रंग की लिपस्टिक कुछ इस अंदाज से लगाई थी कि वो मोटे और भैंसे के गोश्त के टुकड़े की तरह मालूम होते थे। त्रिलोचन का फ्लैट उसके फ्लैट के बिल्कुल सामने था। बीच में एक तंग गली थी, बहुत ही तंग। जब त्रिलोचन अपने फ्लैट में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा तो मोजेल बाहर निकली, खड़ाऊ पहने थी। त्रिलोचन उसकी आवाज सुनकर रुक गया। मोजेल ने अपने परेशान बालों की चक्कू में से बड़ी बड़ी आंखों से त्रिलोचन की तरफ देखा और हंसी। त्रिलोचन बौखला गया। जेब से एक चाबी निकालकर वो जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ा। मोजेल की एक खड़ाऊ सीमेंट के चिकने फर्श पर फिसली और उसके ऊपर आ रही। जब त्रिलोचन संभालता तो मोजेल उसके ऊपर थी, कुछ इस तरह कि उसका लंबा चुंगा ऊपर चढ़ गया था और उसकी दोनों नंगी बड़ी टांगें इसके इधर उधर थी। और जब त्रिलोचन ने उठने की कोशिश की तो वो बौखलाहट में कुछ इस तरह मोजेल, सारी मोजेल से उलझा, जैसे वो साबुन की तरह उसके सारे बदन पर फिर गया। त्रिलोचन ने हाफते हुए मुनासिब मौजू अल्फाज में उससे माफी मांगी। मोजेल ने अपना लिबादा ठीक किया और मुस्कुरा दी। ये खड़ाऊ एकदम कंडम चीज है, और वो उतरी हुई खड़ाऊ में अपना अंगूठा और उसकी साथ वाली उंगली फसाती प्रीडोर से बाहर चली गई। त्रिलोचन का ख्याल था कि मोजेल से उसकी दोस्ती पैदा करने का शायद मुश्किल हो, लेकिन वो बहुत ही थोड़े अरसे में उससे घुल मिल गई। लेकिन एक बात थी कि वो बहुत खुद सर थी। वो त्रिलोचन को कभी खातिर में नहीं लाती थी, उससे खाती थी उसे पीती थी, उसके साथ सिनेमा जाती थी, सारा दिन उसके साथ जूहू पर नहाती थी, लेकिन जब वो बाहों और होठों से कुछ और आगे बढ़ना चाहता था तो वो उसे डांट देती। कुछ इस तौर पर उसे घूरती कि उसके सारे वल्लवे उसकी दाढ़ी और मूछों में चक्कर काटते रह जाते। त्रिलोचन को पहले किसी के साथ मोहब्बत नहीं थी। लाहौर में, बर्मा में, सिंगापुर में वो लड़कियां कुछ अरसे के लिए खरीद लिया करता था। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वो बंबई पहुंचते ही एक निहायत अलहड़ किस्म की यहूदी लड़की के इश्क में गोडे गोडे धस जाएगा। वो इससे कुछ अजीब किस्म की बेएतिनाई और बेइल्तिफाती बरताती थी। इसके कहने पर फौरन सज बनकर सिनेमा जाने को तैयार हो जाती थी, मगर जब वो अपनी सीट पर बैठते तो इधर उधर निगाहें दौड़ाना शुरू कर देती। कोई उसका शनासा निकल आता तो जोर से हाथ हिलाती और त्रिलोचन से इजाजत लिए बगैर उसके पहलू में जा बैठती। होटल में बैठे हैं, त्रिलोचन ने खास तौर पर मोजेल के लिए पर तकल्लुफ खाने मंगवाए, मगर उसको कोई अपना पुराना दोस्त नजर आ गया और वो निवाला छोड़कर उसके पास जा बैठी और त्रिलोचन के सीने पर मूंग दल रही है। त्रिलोचन बाज औकात भुना जाता था क्योंकि वो इससे कतई तौर पर छोड़कर अपने उन पुराने दोस्तों और शनासाओं के साथ चली जाती थी और कई कई दिन इससे मुलाकात न करती थी। कभी सरदर्द का बहाना, कभी पेट की खराबी का, जिसके मुतल्लिक त्रिलोचन को अच्छी तरह मालूम था कि फौलाद की तरह सख्त है और कभी खराब नहीं हो सकता। जब उससे मुलाकात होती तो वो इससे कहती, तुम सिख हो, ये नाजुक बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। त्रिलोचन जल भुन जाता और पूछता, कौन सी नाजुक बातें? तुम्हारे पुराने यारों की? मोजेल दोनों हाथ अपने चौड़े चकले कूल्हों पर लटका कर अपनी तगड़ी टांगे चौड़ी कर देती और कहती, ये तुम मुझे उनके ताने क्यों देते हो? हाँ, वो मेरे यार हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। तुम जलते हो, जलते रहो। त्रिलोचन बड़े वकीलाना अंदाज में पूछता, इस तरह तुम्हारी मेरी किस तरह निभेगी? मोजेल जोर जोर से कहका लगाती, तुम सचमुच सिख हो, इडियट। तुमसे किसने कहा कि मेरे साथ निभाओ? अगर निभाने की बात है तो जाओ अपने वतन में किसी सिखनी से शादी कर लो, मेरे साथ तो इसी तरह चलेगा। त्रिलोचन नरम हो जाता। दरअसल मोजेल उसकी जबरदस्त कमजोरी बन गई थी। वो हर हालत में उसकी गुर्बत का ख्वाहिशमंद था। इसमें कोई शक नहीं था कि मोजेल की वजह से उसकी अक्सर तोहीन होती थी। मामूली मामूली क्रिस्टल लौंडों के सामने, जिनकी कोई हकीकत ही नहीं थी, उसे खफीफ होना पड़ता था, मगर दिल से मजबूर होकर उसने ये सब बर्दाश्त करने के लिए तय कर लिया था। आम तौर पर तोहीन और हतक का रदे अमल इंतकाम होता है, मगर त्रिलोचन के मामले में ऐसा नहीं था। उसने अपने दिलो दिमाग की बहुत सी आंखें मीच ली थी और कई कानों में रुई ठोस ली थी। उसको मोजेल पसंद थी, पसंद ही नहीं, जैसे कि वो अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता था, गोडे गोडे उसके इश्क में धस गया था। अब उसके सिवा और कोई चारा नहीं था। उसके जिस्म का जितना हिस्सा बाकी रह गया है वो भी इस इश्क की दलदल में चला जाए। 2 बरस तक वो इसी तरह ख्वार होता रहा, लेकिन साबित कदम रहा। आखिर एक रोज जबकि मोजेल मौज में थी, अपने बाजुओं में समेट कर पूछा, मोजेल क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? मोजेल उसके बाजुओं से जुदा हो गई और कुर्सी पर बैठकर अपने फ्रॉक का घेरा देखने लगी। फिर उसने अपनी मोटी मोटी यहूदी आंखें उठाई और घनी पलकें झपकाकर कहा, मैं सिख से मोहब्बत नहीं कर सकती। त्रिलोचन ने ऐसा महसूस किया कि पगड़ी के नीचे इसके केसों में किसी ने दहकती हुई चिंगारियां रख दी हैं। उसके तन बदन में आग लग गई। मोजेल, तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाती हो। ये मेरा मजाक नहीं, मेरी मोहब्बत का मजाक है। मोजेल उठी और उसने अपने भूरे तरसे हुए बालों को एक दिल फरेब झटका दिया। तुम शेव करा लो और अपने सर के बाल खुले छोड़ दो तो मैं शर्त लगाती हूँ कि कई लौंडे तुम्हें आंख मारेंगे, तुम खूबसूरत हो। त्रिलोचन के केसों के मजीद चिंगारियां पड़ गई। उसने आगे बढ़कर जोर से मोजेल को अपनी तरफ घसीटा और उसके उनाबी होठों में अपने मूछों भरे होठ पैवस्त कर दिए। मोजेल ने एकदम फूफू की और उसकी गिरफ्त से अलहिदा हो गई। मैं सुबह अपने दांतों पर ब्रश कर चुकी हूँ, तुम तकलीफ ना करो। त्रिलोचन चिल्लाया, मोजेल। मोजेल वेटी बैग से नन्हा सा आईना निकालकर अपने होठों को देखने लगी, जिस पर लगी हुई गाढ़ी लिपस्टिक पर खराशे आ गई थी। खुदा की कसम, तुम अपनी दाढ़ी और मूछों का सही इस्तेमाल नहीं करते। इनके बाल ऐसे अच्छे हैं कि मेरी नेवी ब्लू स्कर्ट बहुत अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेट्रोल लगाने की जरूरत होगी। त्रिलोचन गुस्से की इस इंतहा तक पहुंच चुका था जहां वो बिल्कुल ठंडा हो गया था। आराम से सोफे पर बैठ गया। मोजेल भी आ गई और उसने त्रिलोचन की दाढ़ी खोलनी शुरू कर दी। इसमें जो पिने लगी थी वो उसने एक एक कर अपने दांतों तले दबा ली। त्रिलोचन खूबसूरत था। जब उसकी दाढ़ी मूछ नहीं उगी थी तो वाकई ही लोग उसको खुले केसों के साथ देखकर धोखा खा जाते थे कि वो कोई कम उम्र खूबसूरत लड़की है। मगर बालों के इस अंबार ने अब इसके तमाम खदो खाल झाड़ियों के मानिंद अंदर छुपा लिए थे। उसको उसका एहसास था, मगर वो एक इताअत शियार और फरमाबदार लड़का था। उसके दिल में मजहब का एहतराम था। वो नहीं चाहता था कि इन चीजों को अपने वजूद से अलग कर दे जिनसे उसके मजहब की ताहिरी तकमील होती थी। जब दाढ़ी पूरी खुल गई और उसके सीने पर लटकने लगी तो उसने मोजेल से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? दांतों में पिने दबाए वो मुस्कुराई, तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हैं। मेरा अंदाजा गलत था कि इनसे मेरा नेवी ब्लू स्कर्ट साफ हो सकेगा। त्रिलोचन, तुम मुझे ये दे दो, मैं इन्हें गूंद कर अपने लिए एक फर्स्ट क्लास बटवा बनाऊंगी। अब त्रिलोचन की दाढ़ी में चिंगारियां भड़कने लगी। वो बड़ी संजीदगी से मोजेल से मुखातब हुआ, मैंने आज तक तुम्हारे मजहब का मजाक नहीं उड़ाया, तुम क्यों उड़ाती हो? देखो, किसी के मजहबी जज्बात से खेलना अच्छा नहीं होता। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करता, मगर सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। क्या तुम्हें इसका पता नहीं? मोजेल ने त्रिलोचन की दाढ़ी से खेलना बंद कर दिया। मुझे मालूम है। फिर त्रिलोचन ने अपनी दाढ़ी के बाल बड़ी सफाई से तह किए और मोजेल के दांतों से पिने निकाल ली। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी मोहब्बत बकवास नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे मालूम है। बालों को एक खफीफ सा झटका देकर वो उठी और दीवार से लटकी हुई तस्वीर की तरफ देखने लगी। मैं भी करीब करीब यही फैसला कर चुकी हूँ कि तुमसे शादी करूंगी। मोजेल के उनाबी होठ बड़ी मोटी मुस्कुराहट के साथ खुले और उसके सफेद मजबूत दांत एक लहजे के लिए चमके। हाँ, त्रिलोचन ने अपनी निफ्ट लिपटी हुई दाढ़ी ही से उसको अपने सीने के साथ भींच लिया। तो कब? मोजेल अलग हट गई। जब तुम अपने ये बाल कटवा दोगे? त्रिलोचन उस वक्त जो हो सो हो बना था। उसने कुछ ना सोचा और कह दिया, मैं कल ही कटवा दूंगा। मोजेल फर्श पर टेप डांस करने लगी। तुम बकवास करते हो त्रिलोचन, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। उसने त्रिलोचन के दिलो दिमाग से मजहब के रहे सहे ख्याल को निकाल कर बाहर फेंका। तुम देख लोगी, देख लूंगी। और वो तेजी से आगे बढ़ी, त्रिलोचन की मूछों को चूमा और फू फू करती बाहर निकल गई। त्रिलोचन ने रात भर क्या सोचा, किन किन अजियतों से गुजरा, इसका तज़िकरा फिजूल है। इसके लिए दूसरे रोज उसने फोर्ट में अपने केस कटवा दिए और दाढ़ी भी मुड़वा दी। ये सब कुछ होता रहा और वो आंखें मीचे रहा। जब सारा मामला साफ हो गया तो उसने आंखें खोली और देर तक अपनी शक्ल आईने में देखता रहा, जिस पर बंबई की हसीन से हसीन लड़की भी कुछ देर के लिए गौर करने पर मजबूर हो जाती। त्रिलोचन वही अजीबोगरीब ठंडक महसूस करने लगा जो सैलून से बाहर निकलकर उसको लगी थी। उसने टेरेस पर तेज तेज चलना शुरू कर दिया जहां टैंकों और नलों का एक हजूम था। वो चाहता था कि इस दास्तां का बकाया हिस्सा उसके दिमाग में ना आए, मगर वो आए बिन ना रहा। बाल कटवाकर वो पहले दिन अपने घर से बाहर नहीं निकला था। उसने अपने नौकर के हाथ दूसरे रोज चिट मोजेल को भेजी कि उसकी तबीयत नासाज है, थोड़ी देर के लिए आ जाए। मोजेल आई। त्रिलोचन को वो बालों के बगैर देखकर पहले वो एक लहजे के लिए ठिटकी, फिर माय डार्लिंग त्रिलोचन कहकर उसके साथ लिपट गई और इसका सारा चेहरा उनाबी कर दिया। उसने त्रिलोचन के साफ और मुलायम गालों पर हाथ फेरा। इसके छोटे अंग्रेजी वजह के कटे हुए बालों में अपनी कंघी की ओर अरबी जबान में नारे मारती रही। उसने इस कदर शोर मचाया कि उसकी नाक से पानी बहने लगा। मोजेल ने जब उसे महसूस किया तो अपनी स्कर्ट का घेरा उठाया और उसे पहुंचना शुरू कर दिया। त्रिलोचन शर्मा गया। उसने स्कर्ट नीची की और जनिश के तौर पर उससे कहा, नीचे कुछ पहन तो लिया करो। मोजेल पर इसका कुछ असर ना हुआ। बासी और जगह जगह से उखड़ी हुई लिपस्टिक लगे होठों से मुस्कुराकर उसने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे बड़ी घबराहट होती है, ऐसे ही चलता है। त्रिलोचन को वो पहला दिन याद आ गया जब वो और मुजैल दोनों टकरा गए थे और आपस में कुछ अजीब तरह का गड़गड़ हो गए थे। मुस्कुराकर उसने मुजैल को अपने सीने के साथ लगा लिया। शादी कल होगी जरूर। मुजैल ने त्रिलोचन की मुलायम ठोड़ी पर अपने हाथ की पुष्ट फेरी। तय ये हुआ कि शादी पुणे में हो। चूंकि सिविल मैरिज थी इसलिए उनको 10-15 दिन का नोटिस देना था। अदालती कार्रवाई थी इसके लिए मुनासिब यही ख्याल किया गया कि पूना बेहतर है, पास है और त्रिलोचन के वहाँ कई दोस्त भी हैं। दूसरे रोज उन्हें प्रोग्राम के मुताबिक पूना रवाना हो जाना था। मुजैल फोर्ड के एक स्टोर में सेल्स गर्ल थी। इससे कुछ फासले पर टैक्सी स्टैंड था। बस यहीं मुजैल ने उसको इंतजार करने के लिए कहा था। त्रिलोचन वक्त मुकर्रा पर वहां पहुंच गया था। 1.5 घंटा इंतजार करता रहा मगर वो ना आई। दूसरे रोज उसे मालूम हुआ कि वो अपने एक पुराने दोस्त के साथ, जिसने ताजा ताजा मोटर खरीदी है, देवलाली चली गई है और एक गैर मयूम अरसे के लिए वहीं रहेगी। त्रिलोचन पर क्या गुजरी ये एक बड़ी लंबी कहानी है। किस्सा मुख्तसर है कि उसने जी कड़ा किया और उसको भूल गया। इतने में उसकी मुलाकात कृपाल कौर से हो गई और वो उससे मोहब्बत करने लगा। थोड़े ही अरसे में उसने महसूस किया कि मुजैल बहुत ही वाहियात लड़की थी जिसके दिल के साथ पत्थर लगे हुए थे और जो चीड़ों के मानिंद एक जगह से दूसरी जगह फुदकता रहता था। इस एहसास ने उसको एक गुना तस्कीन हुई कि वो मुजैल से शादी करने की गलती ना कर बैठा था। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी मुजैल की याद एक चुटकी के मानिंद उसके दिल को पकड़ लेती थी और फिर छोड़कर कदकड़े लगाती गायब हो जाती थी। वो बेहया थी, बेमुरव्वत थी, उसको किसी के जज्बात की कोई कद्र ना थी। फिर भी वो त्रिलोचन को पसंद थी, इसलिए कभी कभी वो उसके मुतल्लिक सोचने पर मजबूर हो जाता था कि वो देवलाली में इतने अरसे से क्या कर रही है, उसी आदमी के साथ है जिसने नई नई कार खरीदी थी या उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई है। उसको इस ख्याल से सख्त कोफ्त होती थी कि वो उसके सिवा किसी और के पास होगी। हालांकि उसको मुजैल के किरदार का बखूबी इल्म था। वो उस पर सैकड़ों नहीं हजारों रुपए खर्च कर चुका था, लेकिन अपनी मर्जी से, वरना मुजैल महंगी नहीं थी। उसको बहुत सस्ती किस्म की चीजें पसंद आती थी। एक मर्तबा त्रिलोचन ने उसे सोने के टॉप्स देने का इरादा किया जो उसे बहुत पसंद थे, मगर उसी दुकान में मुजैल झूठे और भड़कीले और बहुत सस्ते आवेजों पर मर मिटी और सोने के टॉप्स छोड़कर त्रिलोचन से मिन्नतें करने लगी कि वो उन्हें खरीद दे। त्रिलोचन अब तक ना समझ सका कि मुजैल किस किमाश की लड़की है, किस आबो गुल से बनी है। वो घंटों उसके साथ लेटी रहती थी, उसको चूमने की इजाजत देती थी। वो सारा सारा साबुन की मानिंद इसके जिस्म पर फिर जाता था, मगर वो उसको इसके आगे 1 इंच बढ़ने नहीं देती थी। उसको चढ़ाने की खातिर इतना कह देती थी, तुम सिख हो, मुझे तुमसे नफरत है। त्रिलोचन अच्छी तरह महसूस करता था कि मुजैल को उससे नफरत नहीं। अगर ऐसा होता तो वो उससे कभी न मिलती। बर्दाश्त का मादा उसमें रत्ती भर भी ना था। वो कभी 2 बरस तक उसकी सोहबत में ना गुजारती, 2 टोक फैसला कर देती। अंडरवियर उसको ना पसंद थे इसलिए कि उनको उससे उलझन होती थी। त्रिलोचन ने कई बार उसको उनकी अशद जरूरत की आगाह किया, उसको शर्मो हया का वास्ता दिया, मगर उसने ये चीज कभी ना पहनी। त्रिलोचन जब उससे हया की बात करता था तो वो चिढ़ जाती थी। ये हया वया क्या बकवास है, अगर तुम्हें इसका कुछ ख्याल है तो आंखें बंद कर लिया करो। तुम मुझे ये बताओ कि कौन सा लिबास है जिसमें आदमी नंगा नहीं हो सकता या जिससे तुम्हारी निगाहें पार नहीं हो सकती। मुझसे ऐसी बकवास ना किया करो। तुम सिख हो, मुझे मालूम है कि तुम पतलून के नीचे एक सिल्की सा अंडरवियर पहनते हो जो नेकर से मिलता जुलता है। ये भी तुम्हारी दाढ़ी और सर के बालों की तरह मजहब में शामिल है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतने बड़े हो गए हो और अभी तक यही समझते हो कि तुम्हारा मजहब अंडरवियर में छिपा बैठा है। त्रिलोचन को शुरू शुरू में ऐसी बात सुनकर गुस्सा आया था, मगर बाद में गौर व फिक्र करने के बाद वो भी कभी कभी लुढ़क जाता था और सोचता था कि मैडमोजेल की बातें शायद ना दुरुस्त नहीं, और जब उसने अपने केसों और दाढ़ी का सफाया करा दिया तो उसे कतई तौर पर ऐसा महसूस हुआ कि वो बेकार इतने दिनों तक बालों का बड़ा बोझ उठाए उठाए फिरा, जिसका कुछ मतलब ही नहीं था। पानी की टंकी के पास पहुंचकर त्रिलोचन रुक गया। मोजेल को एक बड़ी मोटी गाली देकर उसने उसके मुतल्लिक सोचना बंद कर दिया। कृपाल कौर एक पाकीज़ा लड़की जिसको उससे मोहब्बत हुई थी खतरे में थी। वो ऐसे मोहल्ले में थी जिसमें कट्टर किस्म के मुसलमान रहते थे और वहाँ दो तीन वारदात भी हो चुकी थी। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस मोहल्ले में 48 घंटे का कर्फ्यू था, मगर कर्फ्यू की कौन परवाह करता है। इस चाली के मुसलमान ही अगर चाहते तो अंदर ही अंदर कृपाल कौर उसकी माँ और उसके बाप का बड़ी आसानी के साथ साफ सफाया कर सकते थे। त्रिलोचन सोचता सोचता पानी के मोटे नल पर बैठ गया। उसके सर के बाल अब काफी लंबे हो गए थे। उसको यकीन था कि एक बरस के अंदर अंदर ये पूरे केसों में तब्दील हो जाएंगे। उसकी दाढ़ी तेजी से बढ़ी थी, मगर वो उसे बढ़ाना नहीं चाहता था। फुट में एक बार्बर था, वो इस सफाई से उसे तराशता था कि तुरशी हुई दिखाई नहीं देती थी। इसने अपने लंबे और मुलायम बालों में उंगलियां फेरी और एक सर्द आह भरी। उठने का इरादा ही कर रहा था कि उसे खड़ाओं की करकत आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कौन हो सकता है। बिल्डिंग में कई यहूदी औरतें थी जो सब की सब घर में खड़ाऊं पहनती थी। आवाज करीब आती गई। यकलक्त उसने दूसरी टेकनी के पास मोजेल को देखा जो यहूदियों की खास कता का ढीला ढीला लंबा कुर्ता पहने बड़े जोर की अंगड़ाई ले रही थी। इस जोर की कि त्रिलोचन को महसूस हुआ कि इसके आसपास की हवा चटक जाएगी। त्रिलोचन पानी के नल पर से उठा। उसने सोचा कि ये एकाएक कहां से नमूदार हो गई और इस वक्त टेरेस पर क्या करने आई है। मोजेल ने एक और अंगड़ाई ली। अब त्रिलोचन की हड्डियां चटकने लगी। ढीले ढीले कुर्ते में उसकी मजबूत छातियां धड़की। त्रिलोचन की आंखों के सामने कई गोल गोल और चिपटे चिपटे नील उभर आए। वो जोर से खांसा। मोजेल ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसका हृदय अमल बिल्कुल खफीफ था। कड़ाऊं घसीटती वो उसके पास आई और उसकी नन्ही मुन्नी दाढ़ी देखने लगी। तुम फिर सिख बन गए त्रिलोचन। दाढ़ी के बाल त्रिलोचन को चुभने लगे। मोजेल ने आगे बढ़कर उसकी ठोड़ी के साथ अपने हाथ की पुश्त रगड़ी और मुस्कुराकर कहा, अब ये ब्रश इस काबिल है कि मेरी न्यू ब्लू स्कर्ट साफ कर सके, मगर वो तो वहीं देवलाली में रह गई है। त्रिलोचन खामोश रहा। मोजेल ने उसके बाजू की चुटकी ली। बोलते क्यों नहीं सरदार साहब। त्रिलोचन अपनी पिछली बेवकूफियों का इयादा नहीं करना चाहता था। ताहम उसने सुबह के मलगिंजे अंधेरे में मोजेल के चेहरे को गौर से देखा। कोई खास तब्दीली वाकया नहीं हुई थी, एक सिर्फ वो पहले से कुछ कमजोर नजर आती थी। त्रिलोचन ने उससे पूछा, बीमार रही हो। नहीं, मोजेल ने अपने तरसे हुए बालों को एक खफीफ सा झटका दिया। पहले से कमजोर दिखाई देती हो। मैं डाइटिंग कर रही हूँ। मोजेल पानी के मोटे नल पर बैठ गई और खड़ाऊं फर्श के साथ बजाने लगी। तुम गोया की अब फिर नए सिरे से सिख बन रहे हो। त्रिलोचन ने किसी कदर डिटाई से कहा, हाँ मुबारक हो। मोजेल ने एक खड़ाऊ पैर से उतार ली और पानी के नल पर बजाने लगी। किसी और लड़की से मोहब्बत करनी शुरू की। त्रिलोचन ने आहिस्ता से कहा, हाँ मुबारक हो। इसी बिल्डिंग की है क्या कोई। नहीं, ये बहुत बुरी बात है। मोजेल खड़ाऊ अपनी उंगलियों में उड़स कर उठी। हमेशा आदमी को अपने हमसायों का ख्याल रखना चाहिए। त्रिलोचन खामोश रहा। मोजेल ने उठकर उसकी दाढ़ी को अपनी पांचों उंगलियों से छेड़ा। क्या उसी लड़की ने तुम्हें ये बाल बढ़ाने का मशवरा दिया है। नहीं, त्रिलोचन बड़ी उलझन महसूस कर रहा था। जैसे कंघा करते करते उसकी दाढ़ी के बाल आपस में उलझ गए हैं। जब उसने नहीं कहा तो उसके लहजे में तीखापन था। मोजेल के होठों पर लिपस्टिक बासी गोश्त की तरह मालूम होती थी। वो मुस्कुराई तो त्रिलोचन ने ऐसा महसूस किया कि उसके गाँव में झटके की दुकान पर कसाई ने छुरी से मोटी रख के गोश्त के दो टुकड़े कर दिए हैं। मुस्कुराने के बाद वो हंसी, तुम अब ये दाढ़ी मुंडा डालो तो किसी की भी कसम ले लो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। त्रिलोचन के जी में आई कि उससे कहे कि वो एक बड़ी शरीफ बाइज्जत पाक तींत कुआरी लड़की से मोहब्बत कर रहा है और उसी से शादी करेगा। मोजेल उसके मुकाबले में फाहिशा है, बदसूरत है, बेवफा है, बेमुरव्वत है, मगर वो इस किस्म का घटिया आदमी नहीं था। उसने मोज़ेल से सिर्फ इतना कहा, मोज़ेल मैं अपनी शादी का फैसला कर चुका हूँ। मेरे गांव की एक सीधी सादी लड़की है जो मजहब की पाबंद है, उसी के लिए मैंने बाल बढ़ाने का फैसला कर लिया है। मोज़ेल सोच विचार की आदी नहीं थी, लेकिन इसने कुछ देर सोचा और खड़ाऊं पर निस्व दायरे से घूम कर त्रिलोचन से कहा, वो मजहब की पाबंद है तो तुम्हें कैसे कबूल करेगी? क्या उसे मालूम नहीं कि तुम एक दफा अपने बाल कटवा चुके हो? उसको अभी तक मालूम नहीं, दाढ़ी मैंने तुम्हारे देवलाली जाने के बाद ही बढ़ानी शुरू कर दी थी, महज इंतकामी तौर पर। उसी के बाद मेरी कृपाल कौर से मुलाकात हुई, मगर मैं पगड़ी इस तरीके से बांधता हूँ कि 100 में से एक आदमी ही मुश्किल से जान सकेगा कि मेरे केस कटे हुए हैं, मगर अब ये बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। त्रिलोचन ने अपने लंबे मुलायम बालों में उंगलियों से कंघी करना शुरू किया। मोज़ेल ने लंबा गुर्दा उठाकर अपनी गोरी दबीज रान खुजलानी शुरू की। ये बहुत अच्छा है, मगर ये कमबख्त मच्छर यहाँ भी मौजूद हैं। देखो किस जोर से काटा है। त्रिलोचन ने दूसरी तरफ देखना शुरू किया। मोज़ेल ने उस जगह जहाँ मच्छर ने काटा था उंगली से लब लगाई और कुर्ता छोड़कर सीधी खड़ी हो गई। कब हो रही है तुम्हारी शादी? अभी कुछ पता नहीं, ये कहकर त्रिलोचन सख्त मुतफक्किर हो गया। चंद लम्हात तक खामोशी रही। इसके बाद मोज़ेल ने उसके तफक्कुर का अंदाजा लगाकर उससे बड़े संजीदा अंदाज में पूछा, त्रिलोचन तुम क्या सोच रहे हो? त्रिलोचन को उस वक्त किसी हमदर्द की जरूरत थी, ख्वाह वो मोज़ेल ही क्यों ना हो। चुनांचे उसने उसको सारा माजरा सुना दिया। मोज़ेल हंसी, तुम अव्वल दर्जे के इडियट हो, जाओ उसको ले आओ, ऐसी क्या मुश्किल है? मुश्किल है मोज़ेल, तुम इस मामले की नज़ाकत को कभी नहीं समझ सकती। किसी भी मामले की नज़ाकत, तुम एक लाउबाली किस्म की लड़की हो, यही वजह है कि तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात कायम नहीं रह सके, जिसका मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा। मोज़ेल ने जोर से अपनी खड़ाऊं पानी के नल के साथ मारी। अफसोस, बी डीम्ड सिली इडियट, तुम ये सोचो कि तुम्हारी इसका क्या नाम है, उसका मोहल्ले से बचा कर लाना कैसे है? तुम बैठ गए और ताल्लुकात का रोना रोने लगे। तुम्हारे मेरे ताल्लुकात कभी कायम नहीं रह सकते। तुम एक सिली किस्म के आदमी हो और बहुत डरपोक हो। मुझे निडर मर्द चाहिए, लेकिन छोड़ो इन बातों को, चलो आओ तुम्हारी उस कोर को ले आए। इसने त्रिलोचन का बाजू पकड़ लिया। त्रिलोचन ने घबराहट में इससे पूछा, कहाँ से? वहीं से जहाँ वो है, मैं उस मोहल्ले की एक एक ईंट को जानती हूँ, चलो आओ मेरे साथ। मगर सुनो तो, कर्फ्यू है, मोज़ेल के लिए नहीं, चलो आओ। वो त्रिलोचन का बाजू पकड़कर खींचती उस दरवाजे तक ले गई जो नीचे सीढ़ियों की तरह खुलता था। दरवाजा खोलकर वो उतरने वाली थी कि रुक गई और त्रिलोचन की दाढ़ी की तरफ देखने लगी। त्रिलोचन ने पूछा, क्या बात है? मोज़ेल ने कहा, ये तुम्हारी दाढ़ी, लेकिन खैर ठीक है, इतनी बड़ी नहीं है। नंगे सर चलोगे तो कोई नहीं समझेगा कि तुम सिख हो। नंगे सर? त्रिलोचन ने किसी कदर बौखला कर कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। मोज़ेल ने बड़े मासूम अंदाज से पूछा, क्यों? त्रिलोचन ने अपने बालों की एक लट ठीक की। तुम समझती नहीं हो, मेरा वहां पगड़ी के बगैर जाना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? तुम समझती क्यों नहीं हो? उसने मुझे अभी तक नंगे सर नहीं देखा। वो यही समझती है कि मेरे केस हैं। मैं उस पर ये राज इफ्शा नहीं करना चाहता। मोज़ेल ने जोर से अपनी खड़ाऊं दरवाजे की दहलीज पर मारी। तुम वाकई अव्वल दर्जे के इडियट हो, गधे कहीं के। उसकी जान का सवाल है। क्या नाम है तुम्हारी उस कौर का जिससे तुम मोहब्बत करते हो? त्रिलोचन ने उसे समझाने की कोशिश की। मोज़ेल वो बड़ी मजहबी किस्म की लड़की है, अगर उसने मुझे नंगे सिर देख लिया तो मुझसे नफरत करने लगेगी। मोज़ेल चिढ़ गई, ओह तुम्हारी मोहब्बत, बी डीम्ड, मैं पूछती हूँ क्या सारे सिख तुम्हारी तरह बेवकूफ होते हैं? उसकी जान को खतरा है और तुम कहते हो कि पगड़ी जरूर पहनोगे और शायद वो अपना अंडरवियर भी जो नेकर से मिलता जुलता है। त्रिलोचन ने कहा, वो तो मैं हर वक्त पहने होता हूँ। बहुत अच्छा करते हो, मगर अब तुम ये सोचो कि मामला उस मोहल्ले का है जहाँ मियाँ भाई ही मियाँ भाई रहते हैं, और वो भी बड़े बड़े दादा और बड़े बड़े मवाली। तुम पगड़ी पहनकर वहां गए तो जबह कर दिया जाओगे। त्रिलोचन ने मुख्तसर सा जवाब दिया, मुझे इसकी परवाह नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा तो पगड़ी पहन कर जाऊंगा। मैं अपनी मोहब्बत खतरे में नहीं डालना चाहता। मोज़ेल झुंझुला गई। इस जोर से उसने पेचोताप खाए कि उसकी छातियां आपस में भिड़ भिड़ गई। गधे, तुम्हारी मोहब्बत ही कहाँ रहेगी जब तुम ना होगे। तुम्हारी वो क्या नाम है उस भड़वी का, जब वो भी ना रहेगी उसका खानदान तक ना रहेगा। तुम सिख, खुदा की कसम तुम सोख हो और बड़े इडियट सिख हो। त्रिलोचन भुन्ना गया, बकवास ना करो। मोजैल जोर से हंसी, महीन महीन बालों के गुबार से अटी हुई बाहें इसने त्रिलोचन के गले में डाल दी और थोड़ा सा झूल कर कहा, डार्लिंग चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, जाओ पगड़ी पहन आओ, मैं नीचे बाजार में खड़ी हूं। ये कहकर वो नीचे जाने लगी। त्रिलोचन ने उसे रोका, तुम कपड़े नहीं पहनोगी? मोजैल ने अपने सर को झटका दिया, नहीं चलेगा इसी तरह। ये कहकर वो खटखट करती नीचे उतर गई। त्रिलोचन निचली मंजिल की सीढ़ियों पर भी उसकी खड़ाव की चोबी आवाज सुनता रहा। फिर उसने अपने लंबे बाल उंगलियों से पीछे की तरफ समेटे और नीचे उतरकर अपने फ्लैट में चला गया। जल्दी से जल्दी उसने कपड़े तब्दील किए, पगड़ी बंदी बनाई रखी थी उसे अच्छी तरह सर पर जमाया और फ्लैट का दरवाजा मुकफ्फल करके नीचे उतर गया। बाहर फुटपाथ पर मुजैल अपनी तगड़ी टांगे चौड़ी किए सिगरेट पी रही थी, बिल्कुल मर्दाना अंदाज में। जब त्रिलोचन उसके नजदीक पहुंचा तो उसने शरारत के तौर पर मुंह भर के धुआं उसके चेहरे पर दे मारा। त्रिलोचन ने गुस्से में कहा, तुम बहुत जलील हो। मोजैल मुस्कुराई, ये तुमने कोई नई बात नहीं कही, इससे पहले और कई मुझे जलील कह चुके हैं। फिर उसने त्रिलोचन की पगड़ी की तरफ देखा, ये पगड़ी तुमने वाकई बहुत अच्छी तरह बांधी है, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे केस हैं। बाजार बिल्कुल सुनसान था, एक सिर्फ हवा चल रही थी, वो भी बहुत धीरे धीरे, जैसे कर्फ्यू से खौफ ज़दा है। बत्तियां रोशन थी मगर उनकी रोशनी बीमार सी मालूम होती थी। आमतौर पर उस वक्त ट्रेनें चलना शुरू हो जाती थी और लोगों की आमद और रफ्त भी जारी हो जाती थी, अच्छी खासी गहमा गहमी होती थी। पर अब ऐसा मालूम होता था कि सड़क पर कोई इंसान गुजरा है ना गुजरेगा। मोजैल आगे आगे थी, फुटपाथ के पत्थरों पर उसकी खड़ाव खटखट कर रही थी। ये आवाज इस खामोश फिजा में एक बहुत बड़ा शोर थी। त्रिलोचन दिल ही दिल में मोजैल को बुरा भला कह रहा था कि 2 मिनट और कुछ नहीं तो अपनी वाहियात खड़ाऊं ही उतार कर कोई दूसरी चीज पहन सकती थी। उसने चाहा कि मोजैल से कहे, खड़ाऊं उतार दो और नंगे पांव चलो, मगर उसको यकीन था कि वो कभी नहीं मानेगी, इसलिए खामोश रहा। त्रिलोचन सख्त खौफ ज़दा था, कोई पत्ता खड़कता तो उसका दिल धक कर रह जाता। मगर मोजैल बिल्कुल बेखौफ चलती जा रही थी, सिगरेट का धुआं उड़ाती जैसे वो बड़ी बेफिक्री से चल कदमी कर रही थी। चौक में पहुंचे तो पुलिसमैन की आवाज गरजी, ए किधर जा रहा है? त्रिलोचन सहम गया। मोजैल आगे बढ़ी और पुलिसमैन के पास पहुंच गई और बालों को एक खफीफ सा झटका देकर कहा, ओह तुम, हमको पहचानता नहीं तुम, मोजैल। फिर उसने एक गली की तरफ इशारा किया, इधर इस बाजू हमारा बहन रहता है, उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर लेकर जा रहा है। सिपाही उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि उसने खुदा मालूम कहां से सिगरेट की डिबिया निकाली और एक सिगरेट निकालकर उसको दिया, लो पियो। सिपाही ने सिगरेट ले लिया। मोजैल ने अपने मुंह से सुलगा हुआ सिगरेट निकाला और उससे कहा, हियर इज लाइट। सिपाही ने सिगरेट का कश लिया। मोजैल ने दाहिनी आंख उसको और बाएं आंख त्रिलोचन को मारी और खटखट करती उस गली की तरफ चल दी जिसमें से गुजरकर उन्होंने मोहल्ले में जाना था। त्रिलोचन खामोश था मगर वो महसूस कर रहा था कि मोजैल कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करके एक अजीबोगरीब किस्म की मुसर्रत महसूस कर रही है। खतरों से खेलना उसे पसंद था। जब जूहू पर उसके साथ जाती थी तो उसके लिए एक मुसीबत बन जाती थी। समुद्र की पिलतन लहरों से टकराती भिड़ती वो दूर तक निकल जाती थी और उसको हमेशा इस बात का धड़का रहता था कि वो कहीं डूब ना जाए। जब वापस आती तो उसका जिस्म सीपों और जख्मों से भरा होता था मगर उसे उनकी कोई परवाह नहीं होती थी। मोजैल आगे आगे थी, त्रिलोचन उसके पीछे पीछे डर डर के इधर उधर देखता रहता कि उसकी बगल से कोई छुरी मार नमूदार ना हो जाए। मोजैल रुक गई। जब त्रिलोचन पास आया तो उसने समझाने के अंदाज में उससे कहा, त्रिलोचन डियर, इस तरह डरना अच्छा नहीं है, तुम डरोगे तो जरूर कुछ ना कुछ होके रहेगा। सच कहती हूँ, ये मेरी आजमाई हुई बात है। त्रिलोचन खामोश रहा। जब वो गली तय कर कर दूसरी गली में पहुंची जो उस मोहल्ले की तरफ निकलती थी जिसमें कृपाल कौर रहती थी, तो मोजेल चलते चलते एकदम रुक गई। कुछ फासले पर बड़े इत्मीनान से एक मारवाड़ी की दुकान लूटी जा रही थी। एक लहजे के लिए उसने मामले का जायजा लिया और त्रिलोचन से कहा, कोई बात नहीं, चलो आओ। दोनों चलने लगे। एक आदमी जो सर पर बहुत बड़ी प्रात उठाए चल रहा था त्रिलोचन से टकरा गया, प्रात गिर गया। उस आदमी ने गौर से त्रिलोचन की तरफ देखा, साफ मालूम होता था कि वो सिख है। उस आदमी ने जल्दी से अपने नेफे में हाथ डाला और मोजेल आ गई। लड़खड़ाती हुई जैसे नशे में चूर है उसने जोर से उस आदमी को धक्का दिया और मखमूर लहजे में कहा, ए क्या करता है, अपने भाई को मारता है, हम इससे शादी बनाने मांगता है। फिर वो त्रिलोचन से मुखातिब हुई, करीम उठाओ ये बारात और रख दो इसके सर पर। उस आदमी ने नेफे में से हाथ निकाल लिया और शहवानी आंखों से मोजेल की तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर अपनी कोहनी से उसकी छातियों में ठोका दिया, ऐश कर साली ऐश कर। फिर उसने परात उठाई और ये जा वो जा। त्रिलोचन बड़बड़ाया, कैसी जलील हरकत की है हरामजादे ने। मोजेल ने अपनी छातियों पर हाथ फेरा, कोई जलील हरकत नहीं, सब चलता है, आओ। और वो तेज तेज चलने लगी। त्रिलोचन ने भी कदम तेज कर दिए। ये गली तय कर ये दोनों उस मोहल्ले में पहुंच गए जहां कृपाल कौर रहती थी। मोजेल ने पूछा, किस गली में जाना है? त्रिलोचन ने आहिस्ता से कहा, तीसरी गली में, नुक्कड़ वाली बिल्डिंग। मोजेल ने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। ये रास्ता बिल्कुल खामोश था, आसपास इतनी गुंजान आबादी थी मगर किसी बच्चे तक के रोने की आवाज नहीं सुनाई देती थी। जब वो उस गली के करीब पहुंचे तो कुछ गड़बड़ दिखाई थी। एक आदमी बड़े से उस किनारे वाली बिल्डिंग से निकला और दूसरे किनारे वाली बिल्डिंग में घुस गया। उस बिल्डिंग में से थोड़ी देर तक तीन आदमी निकले। फुटपाथ पर उन्होंने इधर उधर देखा और बड़ी फुर्ती से दूसरी बिल्डिंग में चले गए। मोजेल ठिटक गई। उसने त्रिलोचन को इशारा किया कि अंधेरे में हो जाए। फिर उसने होले से कहा, त्रिलोचन डियर, ये पगड़ी उतार दो। त्रिलोचन ने जवाब दिया, मैं ये किसी सूरत में नहीं उतार सकता। मोजेल झुंझला गई, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम देखते नहीं सामने क्या हो रहा है? सामने जो कुछ हो रहा है दोनों की आंखों के सामने था, साफ गड़बड़ हो रही थी। बड़ी पुर असरार किस्म की दाएं हाथ की बिल्डिंग में जब दो आदमी अपनी पीठ पर बोरियां उठाए निकले तो मोजेल सारी की सारी कांप गई। उनमें से कुछ गाड़ी गाड़ी सयाल सी चीज टपक रही थी। मोजेल अपने होठ काटने लगी, गालिबन वो सोच रही थी। जब ये दोनों आदमी गली के दूसरे सिर पर पहुंच कर गायब हो गए तो उसने त्रिलोचन से कहा, देखो ऐसा करो, मैं भाग कर नुक्कड़ वाली बिल्डिंग में जाती हूँ, तुम मेरे पीछे आना, बड़ी तेजी से, जैसे तुम मेरा पीछा कर रहे हो, समझे? मगर ये सब एकदम जल्दी जल्दी हो। मोजेल ने त्रिलोचन के जवाब का इंतजार ना किया और नुक्कड़ वाली बिल्डिंग की तरफ खड़ाऊं खटखटाती बड़ी तेजी से भागी। त्रिलोचन भी इसके पीछे दौड़ा। चंद लम्हे वो बिल्डिंग के अंदर थे। सीढ़ियों के पास त्रिलोचन हांफ रहा था मगर मोजेल बिल्कुल ठीक ठाक थी। इसने त्रिलोचन से पूछा, कौन सा माला? त्रिलोचन ने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी, दूसरा। चलो, ये कह वो खटखट सीढ़ियां चढ़ने लगी। त्रिलोचन उसके पीछे हो लिया। जीनों पर खून के बड़े बड़े धब्बे पड़े थे, उनको देख देख कर उसका खून खुश्क हो रहा था। दूसरे माले पर पहुंचे तो कॉरिडोर में कुछ दूर जाकर त्रिलोचन ने होले से एक दरवाजे पर दस्तक दी। मोजेल दूर सीढ़ियों के पास खड़ी रही। त्रिलोचन ने एक बार फिर दस्तक दी और दरवाजे के साथ मुंह लगाकर आवाज दी, महंगा सिंह जी, महंगा सिंह जी। अंदर से महीन आवाज आई, कौन? त्रिलोचन। दरवाजा धीरे से खुला। त्रिलोचन ने मोजेल को इशारा किया, वो लिपक कर आई। दोनों अंदर दाखिल हुए। मोजेल ने अपनी बगल में एक दुबली पतली लड़की को देखा जो बेहद सहमी हुई थी। मोजेल ने उसको एक लहजे के लिए गौर से देखा। पतले पतले नक्श थे, नाक बहुत ही प्यारी थी मगर जुखाम से मुबतला। मोजेल ने उसको अपने चौड़े चकले सीने के साथ लगा लिया और अपने ढीले ढाले कुर्ते का दामन उठाकर उसकी नाक पहुंची। त्रिलोचन सुर्ख हो गया। मोजेल ने कृपाल कौर से बड़े प्यार के साथ कहा, डरो नहीं, त्रिलोचन तुम्हें लेने आया है। कृपाल कौर ने त्रिलोचन की तरफ अपनी सहमी हुई आंखों से देखा और मोजेल से अलग हो गई। त्रिलोचन ने उससे कहा, सरदार साहब से कहो जल्दी तैयार हो जाएं और अपनी माता जी से भी, लेकिन जल्दी करो। इतने में ऊपर की मंजिल पर एक बुलंद आवाज आने लगी जैसे कोई चीख चिल्ला रहा था। कृपाल कौर के हलक से दबी दबी चीख बुलंद हुई। उसे पकड़ लिया उन्होंने। त्रिलोचन ने पूछा किसे। कृपाल कौर जवाब देने वाली थी कि मोजेल ने उसको बाजू से पकड़ा और घसीट कर एक कोने में ले गई। पकड़ लिया तो अच्छा हुआ, तुम ये कपड़े उतारो। कृपाल कौर अभी कुछ सोच भी नहीं पाई थी कि मोजेल ने आनन फानन में उसकी कमीज उतार कर एक तरफ रख दी। कृपाल कौर ने अपनी बाहों में अपने नंगे जिस्म को छुपा लिया और सख्त दहशत ज़दा हो गई। त्रिलोचन ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मोजेल ने अपना ढीला ढाला कुर्ता उतार और उसको पहना दिया। खुद वो नंग धड़ंग थी। जल्दी जल्दी उसने कृपाल कौर का इजार बंद ढीला किया और उसकी सलवार उतार कर त्रिलोचन से कहने लगी, जाओ इसे ले जाओ, लेकिन ठहरो। ये कहकर उसने कृपाल कौर के बाल खोल दिए और इससे कहा, जाओ जल्दी जल्दी निकल जाओ। त्रिलोचन ने इससे कहा, आओ, मगर फौरन ही रुक गया। पलटकर उसने मोजेल की तरफ देखा जो धुएं देत की तरह नंगी खड़ी थी। उसकी बाहों पर मुहिम मुहिम बाल सर्दी के बायस जागे हुए थे। तुम जाते क्यों नहीं, मोजेल के लहजे में चिड़चिड़ापन था। त्रिलोचन ने आहिस्ता से कहा, इसके माँ बाप भी तो हैं, जन्नत में जाएंगे वो, तुम इसे ले जाओ और तुम, मैं आ जाऊंगी। एकदम ऊपर की मंजिल से कई आदमी धड़ाधड़ नीचे उतरने लगे। दरवाजे के पास आकर उन्होंने उसे कूटना शुरू कर दिया जैसे वो उसे तोड़ ही डालेंगे। कृपाल कौर की अंधी माँ और उसका मफलूज बाप दूसरे कमरे में पड़े कर राह रहे थे। मोजेल ने कुछ सोचा और बालों को खफीफ झटका देकर उसने त्रिलोचन से कहा, सुनो, अब सिर्फ एक ही तरकीब समझ में आती है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। कृपाल कौर के खुश्क हलक में चीख निकलती निकलती दब गई। दरवाजा, मोजेल त्रिलोचन से मुखातब रही। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलती हूँ, तुम मेरे पीछे भागना, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी, तुम भी ऊपर चले आना। ये जो लोग दरवाजा तोड़ रहे हैं सब कुछ भूल जाएंगे और हमारे पीछे चले आएंगे। त्रिलोचन ने फिर पूछा, फिर ये तुम्हारी क्या नाम है इसका, मौके पर निकल जाएगी, इस लिबास में इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। त्रिलोचन जल्दी जल्दी कृपाल कौर को सारी बात समझा दी। मोजेल जोर से चिल्लाई, दरवाजा खोला और धड़ाम से बाहर के लोगों पर गिरी। सब बौखला गए। उठकर उसने ऊपर की सीढ़ियों का रुख किया। त्रिलोचन उसके पीछे भागा। सब एक तरफ हट गए। मोजेल अंधाधुंध सीढ़ियों पर चढ़ती रही, खड़ाऊं उसके पैरों में थी। वो लोग जो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे संभल कर उनके ताकुब में दौड़े। मोजेल का पांव फिसला। ऊपर के जीने से वो कुछ इस तरह लुढ़की कि हर पथरीले जीने से टकराती, लोहे के जंगले के साथ उलझती वो नीचे आ रही थी पथरीले फर्श पर। त्रिलोचन एकदम नीचे उतरा। झुककर इसने देखा तो उसकी नाक में से खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, कानों के रास्ते भी खून निकल रहा था। वो जो दरवाजा तोड़ने आए थे इर्द गिर्द जमा हो गए। किसी ने भी नहीं पूछा क्या हुआ। सब खामोश थे और मोजेल के नंगे और गोरे जिस्म को देख रहे थे जिस पर जा बजा खराशे पड़ी थी। त्रिलोचन ने उसका बाजू हिलाया और आवाज दी, मोजेल, मोजेल। मोजेल ने अपनी बड़ी बड़ी यहूदी आंखें खोली जो लाल बूटी हो रही थी और मुस्कुराई। त्रिलोचन ने अपनी पगड़ी उतारी और खोल कर उसका नंगा जिस्म ढक दिया। मोजेल फिर मुस्कुराई और आंख मारकर उसने त्रिलोचन के मुंह में खून के बुलबुले उड़ाते हुए कहा, जाओ देखो मेरा अंडरवियर वहां है कि नहीं, मेरा मतलब है वो। त्रिलोचन उसका मतलब समझ गया था। उसने उठना ना चाहा था। इस पर मोजेल ने गुस्से से कहा, तुम सचमुच सिख हो, जाओ देख कर आओ। त्रिलोचन उठकर कृपाल कौर के फ्लैट की तरफ चला गया। मोजेल ने अपनी धुंधली आंखों से आसपास खड़े मर्दों की तरफ देखा और कहा, ये मियां भाई है लेकिन बहुत दादा किस्म का, मैं इसे सिख कहा करती हूँ। त्रिलोचन वापस आ गया। उसने आंखें ही आंखों में मोजेल को बता दिया कि कृपाल कौर जा चुकी है। मोजेल ने इत्मीनान की सांस ली लेकिन ऐसा करने में बहुत खून इसके मुंह से बह निकला। ओ डैम इडियट, ये कहकर उसने अपनी महीन महीन बालों से अटी हुई कलाई से अपना मुंह पोंछा और त्रिलोचन से मुखातिब हुई। ऑल राइट डार्लिंग, बाय बाय। त्रिलोचन ने कुछ कहना चाहा मगर लव्स इसके हलक में अटक गए। मोजेल ने अपने बदन पर से त्रिलोचन की पगड़ी हटाई। ले जाओ इसको, अपने इस मजहब को, और इसका बाजू उसकी मजबूत छातियों पर बेहिस होकर गिर पड़ना।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।